और सबसे आगे दुख किसे होता है जब वैष्णव इस जगत से तिरोहित होता है, चला जाता है, सबसे आगे दुख होता है पृथ्वी देवी को, पेनफुल और ब्लिसफुल। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस बात को बोला, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और उनके पार्षद, उनके भक्त श्री हरिदास ठाकुर को पता चला है, लगा कि चैतन्य महाप्रभु अभी कुछ ही दिनों में अप्रकट होने वाले हैं, ये उनको आभास हो रहा था, हरिदास ठाकुर को पता चल रहा था कि वो अप्रकट होंगे। तो हरिदास ठाकुर ने सोचा कि महाप्रभु इस जगत से चले जाने के बाद मैं कैसे जीवित रहूंगा, बल्कि ये प्रेम का एक सर्वोत्तम लक्षण है कि हरिदास ठाकुर इतने अधिक आसक्त थे चैतन्य महाप्रभु से कि जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के बिना अपना जीवन धारण नहीं कर सकते। इसलिए जब महाप्रभु ने नवद्वीप में संन्यास लिया तो हरिदास ठाकुर रो पड़े, और शांतिपुर से जब महाप्रभु निकल रहे थे तो हरिदास ठाकुर उनके पीछे जोर जोर से रो रहे थे कि जैसे कोई माँ के पीछे छोटा सा बालक रोते हुए जा रहा है। हरिदास ठाकुर ने कहा कि हे प्रभु, आप चले जाओगे तो मैं यहाँ क्या करूंगा, क्या होगा मेरा। हाँ, तो ऐसा हरिदास ठाकुर रोदन कर रहे थे। और हरिदास ठाकुर जब जगन्नाथपुरी पहुंचे और फिर उनको जब पता चला कि महाप्रभु अप्रकट होने वाले हैं, तो उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आपसे पहले मैं इस संसार को त्यागना चाहता, आप मेरे ऊपर कृपा करो। तो स्वयं हरिदास ठाकुर अपने शरीर का त्याग करते हैं और फिर चैतन्य महाप्रभु से रहा नहीं जाता। चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, हरिदास ठाकुर का अपनी जिह्वा से गुणगान करते हैं। कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि मानो चैतन्य महाप्रभु के पांच मुख हो गए हो। कितने मुख? पांच। प्रभु हैला पंचमुख, हरिदास ने गुण कहे थे प्रभु हैला पंचमुख, हरिदास की गुण बोलते बोलते महाप्रभु के पांच मुख हो गए और महाप्रभु उनका गुणगान करने लगे। और उन्होंने क्या कहा, हरिदास अचिला पृथ्वी शिरोमणि, हरिदास ठाकुर पृथ्वी के महान रत्न है, तहा बिना रत्न शून्य है न मेदिनी। और हरिदास ठाकुर इस जगत से गए तो इस पृथ्वी का महारत्न क्या हो गया, चला गया। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं कि कितना पृथ्वी देवी को प्रिय है एक जो वैष्णव है, उनका आना और उनका जाना। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को सदैव एक बात की चिंता रहती थी। क्या चिंता है? अब चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरिता महाकाव्य ये सब पढ़ते हैं तो महाप्रभु की एक ही चिंता नजर आती है, और वो क्या है, प्रचार कैसे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। महाप्रभु ने संन्यास लेके जगन्नाथपुरी आए तो महाप्रभु को नवद्वीप की चिंता, अरे मैंने प्रचार आंदोलन वहां शुरू किया है, वहां होगा कि नहीं होगा प्रचार, या फिर मैं ये जगत को त्याग छोड़ के जाने वाला हूं, बाद में प्रचार कौन करेगा। हाँ, क्योंकि बहुत सारे आंदोलन शुरू होते हैं और लगभग 100 साल तक चलते हैं, आज तक हिस्ट्री में है, कोई भी आंदोलन शुरू हुआ है वो 100 साल तक रहा है मैक्सिमम, उसके बाद वो इतना प्रभावशाली नहीं रहा। तो चैतन्य महाप्रभु को चिंता थी कि कौन मेरे बाद प्रचार करेगा, कौन ये हरे कृष्ण आंदोलन आगे बढ़ेगा बढ़ाएगा। तो महाप्रभु ने स्वयं अपने 3 भक्तों के नाम बोले जो आकर आगे चलकर इस आंदोलन का क्या करेंगे, प्रचार करेंगे। बल्कि आज तक ऐसे नहीं हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु ने किसी का नामकरण किया, चैतन्य महाप्रभु ने 3 भक्तों के नाम बोल दिए, उनका नामकरण भी कर दिया और वो आगे चलकर क्या करने वाले थे, प्रचार करने वाले थे। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन का। हाँ, वो तीन डिवोटीज कौन थे? सर्वप्रथम थे नरोत्तम दास ठाकुर। कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर। बल्कि नरोत्तम दास ठाकुर ये चैतन्य महाप्रभु के प्रेम के अवतार है, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर को कहा जाता है चैतन्य प्रेममय तनु। चैतन्य महाप्रभु के प्रेम से जिनका शरीर बना हुआ है, प्रेममय तनु कहा गया है। और दूसरे डिवोटी थे श्रीनिवास आचार्य, जो बुक डिस्ट्रीब्यूटर पुस्तक वितरण के मुखिया थे श्रीनिवास आचार्य। और तीसरे भक्त थे जिनका वर्णन चैतन्य मंगल में किया है, जिनका नाम था मोर सेनापति भक्त जायवे तथा। मेरा सेनापति भक्त कौन है? वो मेरा सेनापति भक्त श्रील प्रभुपाद। बल्कि चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद से इन तीन भक्तों का नाम सर्वविदित हो गया है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ये प्रिय थे तीनों वैष्णव, तीनों भक्त। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर का वर्णन प्रमुख रूप से दो ग्रंथों में पाया जाता है। एक ग्रंथ जिसका नाम है नरोत्तम विलास, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर का चरित्र है, और दूसरा ग्रंथ है प्रेम विलास, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर का चरित्र है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का वर्णन करते हुए प्रेम विलास जो ग्रंथ नित्यानंद दास ने लिखा है, जानवा माता के शिष्य, वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गंभीरता से निष्कपट होकर नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में सुनता है तो क्या उसे लाभ होगा? एक तो है वो आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण संतुष्टि प्राप्त करेगा, भौतिक भोग की लालसा उसके हृदय से खत्म हो जाएगी। और भौतिक जीवन का मतलब है भौतिक भोग करने के लिए लालायित रहना, वो भौतिक जीवन है। और भौतिक भोग जितना भी व्यक्ति करे, न जातु काम कामाना, तो भोग करने से कामना पूर्ति नहीं होती, हम संतुष्ट नहीं होते। इसलिए वो कहते हैं कि आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूप से वो व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा जो नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में क्या करेगा, श्रवण करेगा। हमें साधारण ये समझना चाहिए कि चलो अरे आज भी वो तिरुभाव आ गया, आज भी वो अविर्भाव आ गया किसी भक्त का, चलो ऐसे सुन लेते हैं थोड़ी देर। नहीं, हमें उनके बारे में गंभीर होना चाहिए, क्योंकि ये जो वैष्णव आचार्य है उनका एक गुण हमें अपने दिमाग में हमेशा रखना चाहिए, गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करे माने से जाय ब्रजेंद्र सुत पाश। वो व्यक्ति नंद महाराज के पुत्र के पास जाने का अधिकारी हो जाता है जिस व्यक्ति के हृदय में ये पूरा कन्विक्शन है। क्या? कि ये गौरांग महाप्रभु के जो भक्त है वो सर्वसाधारण नहीं है, वो नित्य सिद्ध है। गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध करी माने, महाप्रभु के भक्त नित्य सिद्ध है। तो इसलिए ये आवश्यक है। और दूसरा क्या होगा नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में सुनने से, उनके चरित्र पर मेडिटेट करने से? वो कहते हैं कि व्यक्ति का हरिनाम के प्रति जो टेस्ट है वो क्या होगा, वृद्धिंगत होगा, बढ़ेगा। और है ऐसा चरित्र, नरोत्तम दास ठाकुर वास्तव में हमें अपने जीवन का हीरो बनाना चाहिए, आइडियल। ऐसे ऐसे आचार्य है। भौतिक संसार में लोग भौतिक चीजों को करने के लिए प्रेरित होते हैं क्योंकि वो अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, किसी ना किसी क्रिकेट स्टार को, राजनेता को, या फिर किसी अभिनेता को। हमें भी क्या करना चाहिए, इन वैष्णव आचार्यों को चूज करना चाहिए और वो हमारे रोल मॉडल होना चाहिए, जो वैष्णव आचार्य है, और उनके चरित्र को सुनना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर का वर्णन चैतन्य महाप्रभु स्वयं करते हैं, तो जितना भी समय होगा उतने समय तक हम नरोत्तम दास ठाकुर की कुछ लीलाओं का वर्णन करने का प्रयास करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में संन्यास ग्रहण करके निवास कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु को हमेशा एक लालसा उनके हृदय में थी, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए केशव भारती से कटवा में, संन्यास लेते ही पहली इच्छा कुछ व्यक्त की उन्होंने, तो वो क्या थी, वृंदावन जाना है। श्री प्रभुपाद छोटे थे तो उनकी भी एक ही इच्छा थी, रोज स्टेशन जाते थे रेलवे स्टेशन और देखते थे कि ट्रेन वृंदावन जाने वाली ट्रेन कौन सी है, कब जा रही है और जगन्नाथपुरी कौन सी ट्रेन जा रही है। बस तो वैसे महाप्रभु संन्यास लिए कहते मुझे वृंदावन जाना है, तो आकाशवाणी में कहा अरे रुको, अभी वृंदावन जाने का सही समय नहीं है, बाद में चले जाना। तो महाप्रभु आते शांतिपुर, वहां से जगन्नाथपुरी रहते, फिर जगन्नाथपुरी में रह के भी शांत नहीं थे, वो बार बार निकल पड़ते थे बाहर अपने रूम से, कहते वृंदावन जाना। फिर एक दिन उन्होंने निश्चय कर ही लिया, पहले साउथ इंडिया चले गए, फिर आके कहते वृंदावन जाना है, तो वृंदावन के लिए निकले, लेकिन अकेले नहीं। अभी सोचो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं तो कौन नहीं उनके साथ जाना चाहेगा। तो जगन्नाथपुरी के जितने भक्त थे, पंडित गण, इवन राजा भी सोच रहा था कि मुझे उनके साथ जाना है, सारे भक्त निकले, हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे चल रहे थे, महाप्रभु आगे चल रहे थे, हजार हजार लोग उनके पीछे वृंदावन के लिए जा रहे थे। और जब चैतन्य महाप्रभु अपने चरण डालते थे आगे और दूसरा चरण उठाते थे, लोग झपट पड़ते थे जहां चरण है वहां की मिट्टी उठाने के लिए। तो ऐसा वर्णन आया है कि सारे रास्ते में जहां जहां चरण पड़े वहां वहां मिट्टी उठाई, तो सब जगह गड्ढे हो गए थे पूरे रास्ते में, इतने महाप्रभु की चरण धूलि लेके पूरा अपना स्नान कर रहे थे, अभिषेक कर रहे थे लोग। फिर महाप्रभु जाते जाते आते हैं, बंगाल से होते हुए राम के लिए जाते हैं और रूप सनातन को दीक्षा दे देते हैं। फिर वहां से महाप्रभु वापस मुड़े तो एक स्थान में आ गए, जिस स्थान का नाम है कानायर नटशाला। आप जाते हो मायापुर तो वहां से कुछ घंटे का जर्नी है, वहां इस्कॉन टेम्पल पे भी है सुंदर। तो कनायर नटशाला नामक स्थान में जो चैतन्य महाप्रभु आए, तो वहां आकर उन्होंने पद्मा नदी को क्रॉस किया और चैतन्य महाप्रभु एक स्थान में बैठ गए। जैसे चैतन्य महाप्रभु बैठे तो महाप्रभु कहते हैं अभी यहां से मैं हिलूंगा नहीं, मुझे कहां भी नहीं जाना है, इधर ही रहना है। नित्यानंद प्रभु कहते अरे आप संन्यास लेके नवदीप इसलिए छोड़ा है एक जगह बैठने के लिए, आपको थोड़ा प्रचार भी करना चाहिए, घूमना चाहिए। कहते नहीं, ये स्थान मेरे लिए अभी फाइनल है, यहां से एक कदम में आगे नहीं जाऊंगा, मैं यहां ही रहना चाहता हूं। तो नित्यानंद प्रभु डांट रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने कहा ओ श्रीपाद, व्यक्ति को वहां ही रहना चाहिए जहां उसे अच्छा लगता है, और नीलाचल से आने का जो मेरा उद्देश्य था वो अभी पूरा हो गया है, मैं इधर ही निवास करूंगा। तो फिर चैतन्य महाप्रभु वहां रुकते उस रात्रि में, और जैसे सुबह हो जाती है चैतन्य महाप्रभु अपनी संकीर्तन टीम को लेकर निकलते हैं नदी के किनारे, पद्मा नदी, और जब कीर्तन करते हुए निकले तो सारे भक्त नाच रहे थे जोर जोर से और हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे, लेकिन एक ही व्यक्ति ऐसा था वो हरे कृष्ण नहीं बोल रहा था, वो कौन थे, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करने के बजाय जोर जोर से चिल्ला रहे थे कीर्तन के बीच में, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, क्या कह रहे थे, जोर से और जोर से। तो महाप्रभु जोर जोर से नरोत्तम 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 कह रहे थे, भक्तों को लगा रहे ये तो कलयुग का धर्म नहीं है, कलयुग का धर्म तो नाम संकीर्तन है, ये नया नाम इंट्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये नित्यानंद प्रभु को थोड़ा शंका आ गई, नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि ये क्या है, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम, हरे कृष्णा कहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम करते जा रहे थे और नरोत्तम बोलते बोलते चैतन्य महाप्रभु के आत्मा से अश्रुपात हो रहा था। प्रेम के अभोर अत्याहार, प्रेम के कई सारे लक्षण चैतन्य महाप्रभु प्रकट कर रहे थे। और फिर अचानक क्या हो गया, चैतन्य महाप्रभु को उनका मूड बदल गया। अचानक वो अभी नरोत्तम के जगह वो मथुरा मथुरा कहने लगे, वृंदावन वृंदावन करने लगे। ऐसे हो गया, भक्तों को लगा कि अभी हमारा हृदय फट रहा है। तो जैसे जैसे उस गांव में वो प्रवेश कर रहे थे, वहां के सारे लोग बाहर आ रहे थे और चैतन्य महाप्रभु रोदन कर रहे थे। महाप्रभु को सारे व्यक्ति ऐसे देख रहे थे, बिना अपनी पलके क्या कहते झपकाए बिना, पलके झपकाए बिना सारे जो निवासी है उस गांव के वो देख रहे थे इस कीर्तन को। और फिर अभी मथुरा मथुरा छोड़ा, अभी उच्चारण करने लगे राधा राधा। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसा ऐसा भाव प्रकट कर रहे थे और फिर रोने लगे चैतन्य महाप्रभु उस कीर्तन में, कहने लगे हे राधा, मेरा शरीर जल रहा है आपके विरह में। हे ललिता, हे विशाखा, हे चंपक लता, आप कब मुझे अपने प्राण सखियों को दिखाओगे। ऐसे महाप्रभु बोलते जा रहे थे, और मेरे जीवन की रक्षा करो, मुझे बचाओ इस विरह अग्नि से। चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में आ गए। अचानक ललिता विशाखा को पुकारने लगे और राधा रानी के मुड़ में चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि मैं तो यमुना में कूद जाऊंगी अभी, और कूद कर अपने प्राणनाथ कृष्ण को प्राप्त करूंगी यदि वो मथुरा से वापस नहीं आते। कृष्ण मथुरा गए हैं, इस भावना में चैतन्य महाप्रभु थे। तो ये सब देख रहे थे कौन, नित्यानंद प्रभु। ये नित्यानंद प्रभु अमेजिंग पर्सनालिटी, उनके कार्यकलाप सबसे हटकर होते हैं। जो नहीं करना वो करेंगे। सबने कहा एक पियकड़ों को प्रचार मत करो, जगाए मदाए को। तो इन्होंने कहा नहीं, जो नहीं करने के लिए कहा है वही हम करेंगे, जाके उनको ब्रिज कर दिया। तो वैसे ही इन्होंने देखा नित्यानंद प्रभु ने कि अभी ये चैतन्य महाप्रभु का अंतिम समय आ गया है, वो अभी शायद यहां से ही प्रकट होने वाले हैं, इस पद्मा नदी के किनारे से ही दी एंड होने वाला है। तो क्या किया नित्यानंद प्रभु ने, सारे भक्तों को एक कोल ऐसे राउंड करवाया, चैतन्य महाप्रभु के कान के बाद ऐसे मुंह करके सबने क्या बोला, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु अपनी बाह्य दशा में वापस आ गए। कभी कभी हमारे साथ भी ऐसे होता है ना, तो कोई भक्त डांट देता है तो हम अपने नॉर्मल सिचुएशन में आ जाते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको अपनी बाह्य दशा में लाया। बाह्य दशा में आते ही फिर से वो नरंतर नरंतर कहने लगे, नित्यानंद प्रभु कहते किसको ढूंढ रहे हो, कौन है वो नरंतर, हमें भी तो बताओ। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे एक महापुरुष प्रकट होने वाला है। ऐसे बोलते ही चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का आलिंगन किया और उस आलिंगन में नित्यानंद प्रभु को अपने आसुओं से स्नान करा दिया। नित्यानंद प्रभु फेंक गए और कहा, नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आप इस रहस्य को हमारे सामने प्रकट करो, कौन है वो महापुरुष नरोत्तम जिसका संग मुझे भी प्राप्त होगा। ऐसे नित्यानंद प्रभु कह रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु पद्मा नदी के किनारे खड़े हो गए और उन्होंने कहा देखो सामने देखो, वो विलेज दिखाई दे रहा है आपको, आपको दिखाई दे रहा है विलेज। उन्होंने कहा आपको, आप देखो वो गांव देखो सामने, गडेरहाट उस गांव का नाम है, वहां एक महान भक्त प्रकट होने वाले हैं और मेरी जो परम इच्छा है, महाप्रभु की तो मेरी इच्छाएं हैं लेकिन उनकी सर्वश्रेष्ठ इच्छा क्या है, कृष्ण नाम का वितरण हो। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वो महान भक्त प्रकट होगा और सारे जगत को या सारे ओडिशा और बंगाल को कृष्ण नाम से डुबाने वाला है, ऐसे वो नरोत्तम है। और कहा कि वो ऐसा गाएगा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, इवन पत्थर या जो लकड़ है उनका कीर्तन सुन के पिघल जाएंगे, ऐसा वो मेरा डिवोटी होगा। नरोत्तम दास ठाकुर थे ही वैसे, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही बोला था। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु फिर कहते हैं कि उसके लिए, क्योंकि मैं आप प्रकट होने वाला हूं, उस नरोत्तम के लिए मैं कृष्ण प्रेम यहां रखना चाहता हूं। इसलिए आज भी आप जाते हो जहां नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य हुआ था, उस गांव का नाम है खेतुरी। तो खेतुरी बहुत ही छोटा गांव है। हाँ, उस समय तो सारे हिंदू राजा थे कृष्णानंद दत्त, भक्तिराम ठाकुर इन्हीं की परंपरा में आए हैं, वंश में केदारनाथ दत्त। तो कृष्णानंद दत्त उनके पिता थे और उनकी माता का नाम था नारायणी देवी। तो ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया कि खेतुरी गांव में वो प्रकट होने वाले हैं, और खेतुरी गांव वृंदावन से अभिन्न है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं वृंदावन और खेतुरी क्या है, एक ही है। वृंदावन अपने गुप्त रूप में खेतुरी के रूप में वहां प्रकट हुआ है, जहां नरोत्तम दास ठाकुर ने जन्म ग्रहण किया। तो वो बहुत ही सुंदर विलेज है, आज भी जाते हैं, अभी वो बांग्लादेश में है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 99% वह मुस्लिम है और एक ही बस हिंदू फैमिली है पूरे गांव में। मैं पिछले साल वहां गया था, बहुत सालों से डिजायर कर रहे थे खेतुरी जाना है, खेतुरी जाना है। तो गए तो वहां नरोत्तम दास ठाकुर का प्रभाव दिखाई देता है। इवन मुस्लिम भी है तो भी वो हरिनाम का उच्चारण करते हैं। और वहां बहुत विशाल मंदिर है जिसमे नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत सुंदर विग्रह और कई सारे डेडीज हैं जिनकी वो पर्सनल सेवा करते थे। तो उस गांव का उसका दूसरा नाम है प्रेमतली। क्या नाम है? प्रेमतली। जहां प्रेम ही प्रेम है या जहां चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम रखा। तो नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि मैं उस नरोत्तम जो आगे जन्म लेने वाला है उसके लिए प्रेम रख के जा रहा हूं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, वहां पद्मा नदी में प्रवेश करते हैं। जैसे ही पद्मा नदी में उन्होंने प्रवेश किया कीर्तन करते हुए, तो पद्मा नदी की लहरें बहुत ऊंची हो गई, मानो कि अभी सारे जगत को अपलगित करने वाली है। सुनामी आई वैसे हो गया, वो सारी नदी जोर जोर से बहने लगी और साक्षात वो जो पद्मा नदी जो देवी के रूप में प्रकट हुई चैतन्य महाप्रभु के सामने, चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरा एक भक्त प्रकट होगा जिसका नाम नरोत्तम होगा, उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये प्रेम तुम्हें दे रहा हूं। अभी आप समझ नहीं सकते प्रेम क्या वस्तु है। चैतन्य महाप्रभु ने वो प्रेम उनको दिया और कहा कि उसे तुम प्रदान करो। तो पद्मावती ने कहा मुझे कैसे पता चलेगा वो बच्चा नरोत्तम ही है, मैं तो नहीं जानती। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो व्यक्ति आपके जल में प्रवेश करे और बहुत सारी लहरें और तरंगे उठने लगे तो तुम समझो कि वो नरोत्तम है। पद्मावती बोले प्रभु करे निवेदन केवले जाने को कारण नाम नरोत्तम, मैं कैसे जानूंगी किसका नाम नरोत्तम है। तो कहते जहार परशे तुम्हें अधिक ऊंचा लिखा सही नरोत्तम प्रेम तारे तुम्हें देवा, कहते वही नरोत्तम होगा जिसको तुम प्रेम दे दो। तो महाप्रभु कीर्तन करते करते निकल जाते हैं शांतिपुर, फिर जगन्नाथपुरी आते हैं, लेकिन सोचते रहते हैं उस गांव के बारे में। फिर यहां नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म होता है पूर्व बंगाल में राजशाही जो डिस्ट्रिक्ट है वहां खेतुरी गांव में। और जन्म होते ही ये बालक की विशेषता क्या थी कि जैसे अन्न प्राशन संस्कार करने के लिए सारे ब्राह्मणों को बुलाया गया, उनके पिता राजा थे कृष्णानंद दत्त, तो जैसे सारे ब्राह्मणों को बुलाया अन्न प्राशन के लिए और उनके मुंह में फून फेड स्पून से फेड कर रहे थे अन्न, तो बच्चा खा नहीं रहा था, मुंह भी नहीं खुला बोल रहा था, चुप था। तो सबको लगा क्या हो गया, तो एक ब्राह्मण ने कहा कि केवल कृष्ण प्रसाद खाता है और नहीं कुछ खाएगा। तो जैसे भगवान को भोग लगाया, वो प्रसाद लाया गया और खिलाने का प्रयास किया तो तब नरोत्तम ने खाया। और नरोत्तम जब बड़े हो गए तो उनकी एक आसक्ति बहुत गहरे थी, उनको पढ़ाने के लिए भेजा जाता था पाठशाला में, लेकिन जैसे स्कूल से आते थे भागते हुए उनके गांव में एक ब्राह्मण थे कृष्णदास, उनके पास जाते थे और घंटों घंटे उनके पास जाके श्रवण करते थे। दो चीजों का, एक चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की लीलाओं को सुनते रहते थे और दूसरा महाप्रभु के जितने भक्त हैं उनके बारे में सुनते रहते थे बचपन से। स्कूल के बाद कुछ और नहीं, होमवर्क नहीं, उनका होमवर्क क्या था, गौर नेता के बारे में श्रवण करना और महाप्रभु के भक्तों के बारे में श्रवण करना। तो नरोत्तम के हृदय में बहुत अधिक आसक्ति हो गई, उनको लगा कि कब वो दिन आएगा कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षदों को देख पाऊंगा या मिल पाऊंगा। तो ऐसे वो दिन भर रोया करते थे। एक बार नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आते और कहते हैं, हे नरोत्तम जाओ तुम परमा नदी में जाकर स्नान करो, तुम्हारी सारी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। तो दूसरे दिन नरोत्तम दास ठाकुर वो उठ जाते हैं और उत्तराखंड बालक ही थे, कुछ ही साल हुए थे, तो उठते ही वो दौड़ कर पद्मा नदी में जाते हैं, पद्मा नदी में जाकर स्नान करते हैं। जैसे प्रवेश करते हैं तो तरंगे बड़ी बड़ी होने लगती है, तो पद्मा नदी समझ जाती है कि ये बालक क्या है, नरोत्तम है। तो वहां नरोत्तम को वो अपना प्रेम प्रदान करती है पद्मा नदी। जैसे उस प्रेम को स्वीकार करते हैं नरोत्तम दास ठाकुर पागल हो जाते हैं। सबसे पहले उनकी जो जीवा है गौरांग नाम का उच्चारण करने लगती है, वो गौरांग 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 के अलावा किसी और का उच्चारण नहीं कर रहे थे। और दूसरा उनका वर्णन शाम कलर में था, अभी गोरे हो गए थे और सुबह से बालक गायब है। तो घर में उनके माता पिता ढूंढ रहे थे, पूरा गांव ढूंढ लिया, कोई नहीं मिला। हाँ तो फिर पता चला कि नदी में जाते ढूंढने, तो वहां गए। ये नरोत्तम बालक पागल की बात है, ऐसे खड़ा है एक जगह और वो केवल गौरांग गौरांग कह रहा है। तो उनकी माँ उनको नारू कह के पुकारती थी, नरोत्तम नाम था लेकिन माँ क्या कहती थी, नारू नारू क्या हो गया तुम्हें। तो ये नारू बोलता है कि मैं जैसे नदी में प्रवेश किया ना, एक सुवर्ण वर्ण का बालक मेरे छाती में हृदय में घुस गया है, जब से वो घुसा है तब से मेरी ये दशा हो गए हैं कि मैं सतत गौरांग गौरांग कहता हूं और दूसरा मेरा ये वर्ण चेंज हो गया है। उनकी माँ कहती तो पहले से ज्यादा सुंदर लग रहे हो, तो लेकिन उनका मन घर में नहीं लग रहा था, बार बार वृंदावन जाने की आकांक्षा उनके हृदय में थी। घर में आए तो सबने सोचा कि इनको किसी भूत ने पकड़ लिया, गोल्डन कलर का भूत जिसने पकड़ लिया, जो एक बार पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है। यही बात रघुनाथ दास गोस्वामी को उनकी माँ ने बोला। रघुनाथ दास गोस्वामी भी ऐसे भागते रहते थे बाहर के पूरे जाके रहना है महाप्रभु के पास। तो उनकी माँ उनके पिता को कहती है इसकी शादी कर लो, फिर नहीं भागेगा जगन्नाथ देवी। तो उनके पिता कहते अरे नहीं, उनकी माता कहती शादी नहीं, शादी तो हो गई थी। माता कहती कि इसको ना बांध दो, लोहे के चैन से बांध दो, श्रृंखला से बांध दो। तो वो कहते उनके पिता कहते कि क्या है लोहे की जंजीर क्या करेगी। कहते इस संसार में दो चीजें सबको बांध के रखती हैं, एक है सुंदर युवती और दूसरा है धन। कहते इंद्र सम ऐश्वर्य स्त्री अप्सरा सम, कहते कि रघुनाथ दास गोस्वामी की जो पत्नी है अप्सरा से भी सुंदर है और इसके पास धन इंद्र से भी अधिक है। ये दोनों भी बांध के नहीं रख सकते, कौन से व्यक्ति को बांध के नहीं रख सकते, चैतन्य चंद्रेर बातु है चे जारे, जो चैतन्य महाप्रभु के लिए पागल हो गया है ना उसे इस संसार में कोई भी चीज बांध के नहीं रख सकती। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर भी पागल हो गए थे। प्रभुपाद भी कहते कि हमारे जो भी भक्त है रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह पागल होते हैं और फिर घर मेरे साथ छोड़ के आके महाप्रभु की शरण ग्रहण करते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का मन नहीं लग रहा था, उनके पिता ने सोचा इसको भूत ने पकड़ा है, तो एक भूत उतारने वाले को बुलाया। उसने कहा इसका भूत तभी उतर सकता है जब जो चाकल है सियार ना, सियार के ब्रेन का सूप इसे पिलाएंगे तब इसका भूत उतर सकता है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर ने सुना है मेरे लिए एक सियार को मारेंगे। उन्होंने कहा पिता यदि आप उस सियार की हत्या करोगे तो मैं घर छोड़ के भाग के चला जाऊंगा। हाँ नरोत्तम दास ठाकुर वैसे ठीक थे, क्योंकि इस संसार में सारे लोग एक दूसरे को पागल समझते हैं। जो भक्त नहीं है वो भक्तों को पागल कहते हैं, कैसे इनकी वेशभूषा है, कैसे बोलते रहते चलते हैं। और जो भक्त है वो सारे जगह को क्या कहते हैं, पागल है। दोनों वास्तव में पागल है, एक माया का भोग करने के लिए और एक कृष्ण को आनंद देने के लिए। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर घर में थे, अकेले पुत्र थे, राजा के पुत्र। उन्होंने सोचा घर से भागने आज मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ। तो उनके पिताजी किसी कार्य के लिए बाहर गए, तो वहां के जो मुस्लिम शासक था उन्होंने कहा कि आप अपने पुत्र को भेजो मेरे पास। तो नरोत्तम ने कहा मैं जाने के लिए तैयार उस राजा से मिलने के लिए। तो कुछ सैनिकों के साथ घोड़े में बैठ के निकले, सैनिकों को कहा कि मैं आता हूँ जरा साइड में होकर। तो घोड़े को भी छोड़ दिया उन्होंने, नरोत्तम दास ठाकुर वहां से दौड़ने लगे। अकेले दौड़ते दौड़ते आप जो बांग्लादेश से दौड़ना है कहा वृंदावन, हम अपने घर से दौड़ के यहाँ गोविंद देव का दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन वहां वो दौड़ने लगे, दौड़ते दौड़ते वो वृंदावन की ओर आए। पहले तो वो इलाहाबाद बनारस वगैरह आए, वहां महाप्रभु की लीला स्थलिया देखी, और फिर वहां से वो मथुरा आए। मथुरा आकर वहां विश्राम घाट में उन्होंने स्नान किया, वराह का दर्शन किया। वहां वर्णन आया उस ग्रंथ में कि उन्होंने कृष्ण का जन्म स्थली देखते ही वो अश्रुपात करने लगे और मूर्छित हो गए। तो ये भक्त ने उठाया, उठो उठो तुम्हें वृंदावन जाना है, वहां रूप सनातन जीव गोस्वामी इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर लंबी यात्रा तय करते हुए वृंदावन आते हैं। अब वृंदावन आकर सबसे प्रथम वो गोविंद देव का दर्शन करते हैं, और एक रात्रि पहले रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी के स्वप्न में आते हैं, और जीव गोस्वामी को कहते हैं कि मैं एक महान वैष्णव को भेजा है यहाँ वृंदावन में, तुम और लोकनाथ गोस्वामी जाओ उसका ध्यान रखो। तो ये जैसे ही गए तो नरोत्तम दास ठाकुर को देखा जो बहुत ही सुंदर थे। ऐसे कहा जाता है कि उस समय सबसे प्रतिभावान व्यक्ति, सबसे सुंदर और भगवान की मानसिक सेवा में सारे ब्रज में इवन इन सारे आचार्य में जो सबसे श्रेष्ठ थे वह नरोत्तम दास ठाकुर थे। इसलिए जीव गोस्वामी भी नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत गुणगान करते थे। नरोत्तम दास ठाकुर को ये जो टाइटल दिया है एक उपाधि हर एक आचार्य को है, जैसे श्रीनिवास को आचार्य उपाधि ये जीव गोस्वामी ने दी है, नरोत्तम दास ठाकुर को ये जो ठाकुर महाशय या महाशय उपाधि किसने दी है, जीव गोस्वामी ने दी है। तो ये महाशय शब्द का अर्थ क्या है, राधारानी चरणाश्रय करे से ही महाशय। राधा रानी का जो चरणाश्रय करने में प्रवीण है या राधा रानी का एक भी जिसने आश्रय ग्रहण किया है वो महाशय है। तो नरोत्तम दास ठाकुर अत्यंत एक्सपर्ट थे विशेष रूप से राधा रानी की सेवा करने में। तो जब ये वहां आए तो जीव गोस्वामी ने कहा कि आप लोकनाथ गोस्वामी का आश्रय स्वीकार करो, बल्कि नित्यानंद प्रभु ने कहा था आप वृंदावन जब जाओगे तो क्या करना, लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा ग्रहण करना। और महाप्रभु ने लोकनाथ गोस्वामी को नरोत्तम दास ठाकुर जन्म ग्रहण करने से पहले कहा था एक मेरा महान भक्त इस संसार में प्रकट होगा नरोत्तम, तुम उसको दीक्षा देना। मतलब पहले से बता दिया था तुम्हारे गुरु कौन और लोकनाथ को कहा तुम्हारे शिष्य कौन। तो ये जब वहां आए तो नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी को अप्रोच किया, जो पहले गोस्वामी है वृंदावन में, सबसे पहले कोई गोस्वामी गए थे तो वो लोकनाथ गोस्वामी है। ये छह गोस्वामी से पहले चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु और लोकनाथ गोस्वामी एक ही स्कूल में पढ़ते थे, वो आपस में बहुत घनिष्ठ मित्र थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो लोकनाथ, तो वृंदावन चले जाना। तो जब एक लोकनाथ गोस्वामी के पास नरोत्तम दास ठाकुर गए और नरोत्तम दास ठाकुर ने लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा की याचना की, आप मुझे क्या करो दीक्षा प्रदान करो। पहले तो लोकनाथ गोस्वामी ने बोला कि आप अपना जरा जीवन हिस्ट्री मुझे बताओ। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा मेरे लिए तो प्रेम रखा हुआ था नदी में, लोकनाथ गोस्वामी के तुम्हें तो सिद्धि प्राप्त हो गई, दीक्षा की क्या आवश्यकता है, प्रेम तो पैसे पहले मिला है, जिनको प्रेम चाहिए उनको ये सब विधि फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते नहीं, मैं आपके चरणों का आश्रय स्वीकार करके राधा कृष्ण की ब्रज में सेवा करना चाहता हूं। लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, नरोत्तम दास ठाकुर कहते स्वयं महाप्रभु ने दीक्षा ग्रहण की, कृष्ण ने भी दीक्षा ग्रहण की, सारे आचार्य ने दीक्षा ग्रहण की, तो मैं भी दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूं। लोकनाथ गोस्वामी कहते हैं दीक्षा लेने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, मैं खुद ही पतित हूं, मैं क्या तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार करूंगा। तो लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर बहुत फिक्स थे, मुझे आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करना है तो वो कौन, लोकनाथ गोस्वामी। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा ठीक है चलो एक साल परीक्षा करेंगे हम एक दूसरे की, क्योंकि हरिभक्ति विलास के सनातन गोस्वामी ने कहा है दीक्षा लेने के पूर्व एक साल, हाँ शिष्य ने भी गुरु को चेक करना चाहिए और गुरु ने भी शिष्य को चेक करना चाहिए। तो ऐसे जब कहा तो नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन में ही निवास करने लगे और लोकनाथ गोस्वामी की विशेष सेवा करने लगे। क्या सेवा थी वो, हाँ बाहरी रूप से देखा जाए तो बहुत ही नगण्य कार्य था, वो नगण्य सेवा थी। तो लोकनाथ गोस्वामी जब सुबह के समय में उठते थे और अपना प्रातः शौच क्रिया करने जाते थे जंगल में और वो वापस आ जाते थे, तो नरोत्तम जो राजपुत्र थे रोज जाकर जहां ये शौच करते थे उस स्थान को झाड़ू ले जाते थे और सफाई करते थे, वहां फ्रेश मिट्टी रखते थे, पानी से साफ करते थे, झाड़ू से साफ करते थे और वो झाड़ू अपनी छाती में लगा के रोया करते थे कि हे लोकनाथ आप मेरे ऊपर क्या करो कृपा करो। इसलिए वो लिखा हुआ है ना वहां लोकनाथ लोकेन जीवन, जो ये प्रार्थना हम गाते गुरु वंदना ये किसके द्वारा प्रदत्त है, नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने दो ग्रंथ लिखे थे, एक ग्रंथ था प्रार्थना और दूसरा ग्रंथ था प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो ये जो गुरु वंदना है ये सॉन्ग प्रेम भक्ति चंद्रिका का सॉन्ग है, जो प्रभुपाद ने हमें दिया है, रोज उसका उच्चारण हम करते हैं गुरु की प्रसन्नता हेतु। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर के दो प्रमुख ग्रंथ थे और नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे जब सेवा कर रहे थे अपने गुरु की, फिर लोकनाथ गोस्वामी रोज सुबह जाते थे देखते थे अरे जहां मैं शौच के लिए जाता हूं वो स्थान बिल्कुल साफ दिखता है, क्लीन है। जैसे गोपाल कृष्ण महाराज कह रहे थे कि उन्होंने प्रभुपाद की सबसे पहले कोई सेवा की मेलबोर्न में, शायद मॉन्ट्रियल में, वो क्या थे उनके जो वो गए उन्होंने उस जगह मंदिर में गए थे तो वहां के अधिकारी थे उनको कहा, उन्होंने कहा प्रभुपाद आने वाले हैं, तो उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ प्रभुपाद के लिए सेवा, कहते प्रभुपाद का रूम है ना मैं टॉयलेट जाके साफ कर लूं। तो कहते वो प्रथम सेवा थी मेरी श्रील प्रभुपाद के लिए। तो वैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर जब ये सेवा कर रहे थे तो ये लोकनाथ गोस्वामी ने देखा कि अरे ये क्या है कौन ये साफ करता है रोज। तो एक दिन लोकनाथ गोस्वामी छुप गए झाड़ियों के पीछे और देखा कौन ये कार्य कर रहा है, देखा नरोत्तम दास ठाकुर हाँ वो सफाई कर रहे और वो रहे कृपा के लिए। हाँ इसलिए वैष्णव की कृपा के बिना झाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाई, भक्तों की सेवा के बिना व्यक्ति संसार से मुक्त नहीं हो सकता, उसके हृदय में भगवत आकर्षण जागृत नहीं हो सकता। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर को जब लोकनाथ गोस्वामी ने देखा तो लोकनाथ गोस्वामी को बहुत दया आई। उन्होंने कहा नरोत्तम बताओ, हाँ पहले पूछा तुम कौन हो? हाँ वो कहते मैं आपके सेवकों के सेवकों का सेवक, ये उत्तर था उनका। फिर उन्होंने कहा क्या चाहते हो नरोत्तम? उन्होंने कहा मैं तो बस आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ, आप मुझे अपने शिष्य या दास के रूप में स्वीकार कीजिए। तो उनको हाथ पकड़ के ले आते हैं, उनको एक स्थान पर बिठाते हैं और वो कहते हैं नरोत्तम एक साल तक मैं आपको देखूंगा, अभी आप क्या करो, रोज हरे नाम का उच्चारण करो। तो रोज 100,000 नाम जप की करने के लिए कहा था उनको नरोत्तम दास ठाकुर को। बहुत लंबा वर्णन है क्या क्या उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे दीक्षा से पूर्व। फिर लोकनाथ गोस्वामी बाद में कालांतर में कुछ समय के बाद उनको दीक्षित करते हैं, दीक्षा प्रदान करते हैं और नरोत्तम दास ठाकुर अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं। तो वृंदावन में जब एक बार वो निवास कर रहे थे तो उस समय अचानक जब भगवान राधा कृष्ण की वो सेवा कर रहे थे, कैसे मानसिक सेवा, मन में वो सेवा कर रहे थे राधा कृष्ण की। अब पहले उस रात्रि में उनको स्वप्न आया, श्रीमती राधा रानी कहती है नरोत्तम दास ठाकुर को स्वप्न में आकर, हे नरोत्तम, और नरोत्तम दास ठाकुर कृष्ण लीला में कौन है? चंपक मंजरी है। तो उनको राधा रानी कहती है कि कृष्ण अभी आने वाले हैं हमारे कुंज में, सखियों के बीच में, तो हे चंपक मंजरी तुम क्या करो, कृष्ण के लिए दूध बॉइल करो। नरोत्तम दास ठाकुर की कृष्ण लीला में एक ही सेवा है, कृष्ण के लिए क्या करना, दूध बॉइल करना। किसके अंदर? चंपक लता के अंदर, जो अष्ट सखी है उनमें से। तो ये जब कहा तो वो दूध बॉइल करने लगे, मानसिक सेवा में मन में वो ये सेवा कर रहे थे। एक दिन तो ये सेवा में इतने मग्न हो गए क्योंकि राधा रानी में प्रदत्त सेवा है, इतने निमग्न हो गए हैं कि उन्होंने देखा कि अभी फायर बहुत तेजी से बढ़ रही है, आग जल रही है तेजी से और दूध अभी बाहर गिरने वाला है, तो उसको दूध को बचाना होगा। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने सोचा नहीं, कुछ कपड़ा या कुछ नहीं लिया कि बर्तन को उठा के नीचे रखो, अपने दोनों हाथ लगाए, इतना उबलता हुआ दूध आया जो बर्तन था उसको उठा के ऐसे रख दिया नीचे। अरे किसमें हो रहा था सेवा? मन में। तो जैसे ही उस बाह्य दिशा में आए मानसिक सेवा के बाद, देखा कि उनके हाथ क्या हो गए, पूर्ण रूप से जल गए हैं। ये लोकनाथ गोस्वामी देखकर कहते हैं कि हे नरोत्तम तुम वास्तव में राधा रानी के अत्यंत प्रिय हो। और इसी कारण से जीव गोस्वामी ने जब ये सेवा देखी तो उनको ये महाशय उपाधि दी थी या ठाकुर महाशय। इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर ब्रज में रहते हैं। और एक दिन जब जीव गोस्वामी, श्रीनिवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर, ये तीनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड थे, एक साथ ये जीव गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त करते थे, तो ये तीनों को ही जीव गोस्वामी ने आज्ञा दी थी कि आप तीनों जाओ गोस्वामियों के ग्रंथों को लेकर बंगाल और उड़ीसा में पहुंचाओ और प्रचार करो। तो ये तीनों चले जाते हैं। बीच में आप सुनते हैं कि कैसे उन ग्रंथों का चुराया जाता है। फिर नरोत्तम दास ठाकुर अपने गांव चले जाते हैं खेतुरी, और श्यामानंद प्रभु ओडिशा जाते हैं, और श्रीनिवास आचार्य बंगाल में रहते हैं, अपने जो अपना जो गांव है उस स्थान में प्रचार करते हैं। तो जैसे नरोत्तम दास ठाकुर अपने गांव खेतुरी जाते हैं तो वहां जाकर देखते हैं कि उनके पिता का देहांत हो गया था और उनके जो चाचा के पुत्र है संतोष देव वो अभी राजा बने हुए थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर का स्वागत करते वहां उनके गांव में, और वो अपने जो चाचा के पुत्र है संतोष देव उनको दीक्षा प्रदान करते हैं। फिर नरोत्तम दास ठाकुर पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो प्रकट हुए थे लेकिन कभी एक गौर पूर्णिमा नहीं मनाया जाता था, महाप्रभु का जन्म तिथि बड़े उत्साह से मनाया नहीं जाता था। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर थे जिन्होंने सर्वप्रथम गौर पूर्णिमा फेस्टिवल शुरू किया था। जब उन्होंने सोचा कि गौर पूर्णिमा मनाना है तो उन्होंने वृंदावन, ओडिशा, बंगाल, जितने बड़े बड़े भक्त थे सबको बुलाया, हजारों की संख्या में उनको इनविटेशन भेजा, और हजारों की संख्या में सारे भक्त आए, और उन सारे भक्तों के लीडर थे जानवा माता। उस समय सबसे सीनियर वैष्णव कोई थे प्लैनेट में, वो थे नित्यानंद प्रभु की जो पत्नी है मदर जानवा, वो थी। उनके अध्यक्षता में गौर पूर्णिमा फेस्टिवल नरोत्तम दास ठाकुर ने मनाया, और जानवा माता ने सारे वैष्णवों के लिए एक सेवा की। वो सेवा क्या थी? कुकिंग। उन्होंने कहा इतने सारे वैष्णव बन आए हैं, मैं उन सबकी सेवा करना चाहती हूँ। तो जानवा माता जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी है, उन्होंने सबके लिए कुकिंग किया, और जिस दिन गौर पूर्णिमा था उस दिन सारे बैठ गए, और सबने विशेष रूप से श्रीनिवास आचार्य ने कहा हे नरोत्तम आप क्या करो, कृष्ण के लिए कीर्तन करो। तो नरोत्तम दास ठाकुर वैसे बहुत फेमस है कीर्तन के लिए, तो नरोत्तम दास ठाकुर सबका आशीर्वाद लेते हैं, और एक स्थान में बैठकर जैसे कीर्तन करना शुरू करते हैं, और इतना मधुर कीर्तन कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु अपने सारे पार्षदों के साथ प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि पंचतंत्र तो और प्रकट हो गए थे। हरिदास ठाकुर बहुत सारे भक्त इस प्लैनेट में नहीं थे, वो सारे चैतन्य महाप्रभु के साथ प्रकट हो जाते हैं उस कीर्तन में, और ये सारे उनको देखकर आनंदित होते हैं, और कुछ समय के बाद फिर से प्रकट हो जाते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर उसके बाद कभी वृंदावन वापस नहीं आए खेतुरी के बाद। नरोत्तम दास ठाकुर उसी स्थान में रहे, और उसी स्थान में उन्होंने पेड़ के नीचे अपना भजन स्थली बनाया, जिसको भजन तली कहते हैं। आज वो स्थान है खेतों के बीच में, बड़ा सा वृक्ष है, उसके ऊपर नरोत्तम दास ठाकुर का भजन प्लेस है। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रिय भक्त उनके साथ हमेशा भजन करते थे, रामचंद्र कविराज। रामचंद्र कविराज गृहस्थ डिवोटी थे, और नरोत्तम दास ठाकुर एक ब्रह्मचारी थे वैसे देखा जाए तो। लेकिन रामचंद्र कविराज को सदैव आनंद आता था नरोत्तम दास ठाकुर के संग में, इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिखते ना उस सॉन्ग में आखिर में रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, क्योंकि ये दोनों एक आत्मा इस प्रकार से थे। इन दोनों ने एक स्थान में रह के इतना भगवत भजन किया है। नरोत्तम दास ठाकुर को पत्र आते थे रामचंद्र कविराज के पत्नी के, वो कहते थे मेरे पति को आपने रख दिया है वहां, वापस भेजो उसको। तो एक बार नरोत्तम दास ठाकुर को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा रामचंद्र घर चले जाओ, तुम्हारी पत्नी मुझे डांटती रहती है, तुम हमेशा यहाँ रहते हो। रामचंद्र कविराज रोज भगवान का पूरा मंदिर झाड़ू लगाना, डेटी वर्शिप करना, प्रेज करना, सारी सेवाएं करते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा तुम्हारी पत्नी बहुत बुला रही है, तुम्हें कल किसी भी स्थिति में जाना होगा यहाँ से। तो रामचंद्र कविराज निकल जाते हैं तो दूसरे दिन की जो मंगल आरती है उससे पहले पहुंच जाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर के उस टेम्पल में, और फिर वापस नहीं जाते हैं। कि आपके संग के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता, इवन अपनी पत्नी बच्चे घर ये सब मुझे आनंद नहीं देते जितना आपका जो सहचर्य है। तो रामचंद्र कविराज वहां रहे उनके संग में, और इन दोनों ने कई सारे लोगों को प्रेरित किया नरोत्तम दास ठाकुर के साथ। तो एक बार नरोत्तम दास ठाकुर को पता चला कि बहुत सारे वैष्णव अप्रकट हो गए हैं, तो बहुत दुखी हो गए। और फिर श्रीनिवास आचार्य भी वृंदावन आके रह रहे थे, तो श्रीनिवास आचार्य ने पत्र लिखा कि नरोत्तम मेरे शिष्य रामचंद्र कविराज को जल्दी वृंदावन भेज दो। अभी तो ये एक ही थे जिनसे वो अपना भक्तिमय जीवन शेयर करते थे, एक साथ भजन करते थे, उसमें भी श्रीनिवास आचार्य ने अपने शिष्यों को वृंदावन बुला दिया रामचंद्र कविराज को। तो फिर बहुत दुखी हो गए, और फिर रामचंद्र कविराज भी जाते हैं वहां, और फिर एक लेटर आता है कि इन दोनों ने शरीर छोड़ दिया, किसने? श्रीनिवास आचार्य और रामचंद्र कविराज। तब एक गीत उनके मुख से निकला, वो गीत कौन सा था? जय आने दो प्रेम धन करुणा प्रचुर। हाँ, ये गीत वहां उनके मुख से निकला भजन गली में, जहां वो अकेले रहकर भजन करते थे और वैष्णव के विरह में इतने पागल हो गए नरेंद्रदास ठाकुर कि भक्तों के बिना मेरा जीवन पूर्ण नहीं है, बहुत दुखी थे। तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि मुझे इस जगत में नहीं रहना है, मैं अपनी लीला प्रकट करने वाला इस संसार से त्यागने, संसार को त्यागना चाहता हूँ। उससे पहले कई सारी लीलाएं आती हैं, अलग अलग लोगों का उन्होंने उद्धार किया, बड़े बड़े पापी और ब्राह्मण आदि को उन्होंने दीक्षा आदि प्रदान की। एक लीला मुझे स्मरण आई है कि एक बार जब दूसरा गर्भ पूर्णिमा फेस्टिवल था, तो उस समय बहुत सारे भक्त आए थे वहां मनाने के लिए खेतुरी में। तो ये दो डिवोटीज की सेवा थी भागवत क्लास देना मॉर्निंग में, जैसे हमें भागवत क्लास करते थे फेस्टिवल के दिन। तो फेस्टिवल के सुबह के दिन समय श्रीनिवास आचार्य का ट्रंक था कि वो भागवत क्लास ले, और उसके बाद था नित्यानंद प्रभु के पुत्र वीरचंद्र प्रभु क्लास देने वाले थे। तो पहले श्रीनिवास आचार्य ने प्रवचन दे दिया, फिर उसके बाद वीरचंद्र प्रभु बैठ गए व्यासासन पर, जो क्षीरोदकशायी विष्णु है साक्षात। तो वीरचंद्र प्रभु प्रवचन दे रहे थे, इसके लिए उनका एक टॉपिक था कि जो वैष्णव है वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, इसके बारे में वो बोलते जा रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि जो वैष्णव है, जो वैष्णव है उसको ये आवश्यक नहीं है कि उसके छाती पर ब्राह्मण थ्रेड या जनेऊ होना, बल्कि वैष्णव का जनेऊ उसके छाती के अंदर ही होता है, हृदय में होता है। तो वहां कई सारे नास्तिक लोग भी थे और जो नरोत्तम दास ठाकुर से बहुत ईर्ष्या करते थे। क्यों ईर्ष्या करते थे? कि नरोत्तम दास ठाकुर कायस्थ परिवार में जन्मे थे और ये सब लोग उनको शूद्र कहते थे, और नरोत्तम दास ठाकुर कायस्थ परिवार में होते हुए उन्होंने लाखों की संख्या में लोगों को शिष्य बनाया था, ब्राह्मणों को दीक्षा दे दी थी, बड़े बड़े पंडित राजाओं को उन्होंने शिष्य बना लिया था। तो वो सोचते थे ये ब्राह्मण नहीं है लेकिन फिर भी दीक्षा देता है, फिर भी शिक्षा देता है, ये उचित नहीं है। तो सब उनसे ईर्ष्या करते थे, उनका अनादर करते थे। तो वीरचंद्र प्रभु ने बोला, इवन हमारे जो नरोत्तम है, ऐसे बोला वैसे ही, कि हमारे जो नरोत्तम है ये भी अपना थ्रेड प्रकट कर सकते हैं। जो जनेऊ है, उन्होंने जनेऊ तो धारण नहीं किया था नरोत्तम दास ठाकुर ने, जो ब्राह्मण नहीं थे। तो वहां के जो नास्तिक लोगों ने कहा कि सही में ये नरोत्तम ब्राह्मण है, जनेऊ है इनके पास हृदय में, तो वो दिखा दे। तो वहां वो पूरे सभा के बीच में नरोत्तम दास ठाकुर ने हनुमान की तरह खड़े हो गए। खड़े होकर नरोत्तम दास ठाकुर ने अपना छाती ऐसे फाड़ा, महान आचार्य है, हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए श्रद्धा विहीन जो व्यक्ति है वो ऐसी लीला पर विश्वास नहीं कर सकता, और जो विश्वास नहीं करता उसका पता नहीं संसार में निश्चित है। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने अपना छाती श्रीनिवास आचार्य वीरचंद्र प्रभु सारे वैष्णव के समक्ष ऐसे विदीर्ण किया और ऐसे उंगली डाल के अपना गोल्डन थ्रेड, गोल्डन कलर का छलेवा से बाहर निकाला। सारे जो नास्तिक आदि थे सब वैष्णव भी नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में गिर पड़ते हैं और हजारों की संख्या में वहां दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर ने इतना अधिक प्रचार किया चैतन्य महाप्रभु का, हरे नाम का, कि उन्होंने सोचा कि अपने शरीर को मैं त्याग करना चाहता हूँ। एक दिन वो अपने विग्रह, उनके 6 विग्रह थे, वल्लभी कांत, गौरांग, विष्णु प्रिया, ऐसे राधा मदन मोहन, इन सबका उन्होंने दर्शन किया और वहां से वो अपने शिष्य गंगा नारायण चक्रवर्ती के गांव गए, जिस गांव का नाम था गांभीला, उधरी एक स्थान है, वहां गंगा नदी बहती है। तो वहां जब ये गए और वहां जाकर अपना शरीर त्यागना चाहते थे, बल्कि वहां जाकर उनके घर में रहे और 3 दिन तक मूर्छित अवस्था में थे कि सांस भी नहीं चल रही थी। तो उनको चिता के ऊपर रख दिया शरीर अंतिम क्रिया करने के लिए गंगा के किनारे। तो जितने और भी नास्तिक लोग थे जो कहते इसकी हालत ऐसी होनी थी, हाँ दीक्षा देता है ब्राह्मणों को भी, प्रचार करता है, ऐसे जो बहुत ईर्ष्या लोग थे वो बहुत कुछ बोलने लगे। तो नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य थे गंगा नारायण चक्रवर्ती, वो नरोत्तम दास ठाकुर को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आपसे द्वेष और ईर्ष्या करेगा वो अनंत काल तक नरक यातना भुगतेगा, इसलिए हे प्रभु आप प्लीज उठ जाइए, आप इस जगत से अभी प्रयाग मत कीजिए, आप इस सारे दुष्टों पर कृपा कर दीजिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर लिटरली जिनको चिता के ऊपर रखा था वो आग खोलते और उठकर खड़े हो जाते हैं। सारे जो लोग हैं दौड़ते हैं उनसे दीक्षा लेने के लिए। तो गंगा नारायण चक्रवर्ती के घर जाते हैं नरोत्तम दास ठाकुर आदि, उनकी जो कन्या थी उन्होंने प्रसाद बनाया था उसको स्वीकार करते हैं और फिर दूसरे दिन कहते हैं कि मुझे गौरांग महापुरुषों के पास वापस जाना है। तो फिर सारे भक्तों को लेकर गंगा नदी के तट पर आते हैं और गंगा नदी के दोनों तटों पर हजारों हजारों वैष्णव कीर्तन करने लगे और नरोत्तम दास ठाकुर अपने 2 शिष्यों को लेकर गंगा नदी में प्रवेश करते। पद्मा जो गंगा नदी है बंगाल में उसकी कई धारा होती है, एक धारा जब बांग्लादेश जाती है उस धारा का नाम क्या है पद्मा नदी। तो उस पद्मा नदी में जब नरोत्तम दास ठाकुर गए या गंगा नदी में और वहां जाकर उनके शिष्यों को कहा बैठ गए पानी में, शिष्यों को कहा कि आप मुझे क्या करो अपने हाथों से स्नान कराओ जल डालो मेरे ऊपर। तो उनके 2 शिष्य एक इस तरफ एक और इधर एक, ऐसे दोनों शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर के ऊपर जल डाल रहे थे, जल उठाते थे डालते थे ऐसे और हाथ ऐसे पोछते थे, तुरंत ही उनका शरीर मेल्ट हो रहा था। नरोत्तम दास ठाकुर का शरीर भौतिक नहीं था, पंच महाभूतों का नहीं था, तो जैसे जल डालते थे वो बॉडी मिल्क में कन्वर्ट हो गया, दूध में परिवर्तित हो गया सबके सामने कीर्तन के बीच में। और देखा कि कुछ ही क्षणों में उनके सामने नरोत्तम दास ठाकुर क्या बने संसार से अप्रकट हो जाते हैं। हाँ तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर का जो पुष्प समाधि है वो वृंदावन आप जाते हो राधा विनोद टेम्पल में वहां है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर के बीच की बहुत सारी लीलाएं हैं जिनका मैंने वर्णन नहीं किया। हाँ लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के गुरु गौर किशोर बाबा जी महाराज के पास एक व्यक्ति आया, उन्होंने पूछा ओ बाबा जी महाराज आप मुझे बताइए कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त करना चाहिए, क्या है इजी वे सरल उपाय क्या है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। तो बाबा जी महाराज ने कहा व्यक्ति के पास 2 आना होना चाहिए, 2 आना में सोचो 2 रुपए कोई वैल्यू नहीं है, 2 रुपए में क्या आता है कुछ भी नहीं आता, 2 रुपए या 2 आना होना चाहिए। उन्होंने कहा उससे क्या होगा, गौर विश्वनाथ बाबा जी महाराज ने कहा वो 2 आना लेकर मार्केट में जाओ, मार्केट में जाकर नरोत्तम दास ठाकुर की 2 किताबें खरीदो, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, आपको कोई और चीज संसार में दूसरा नहीं चाहिए, ये 2 ग्रंथ आपको कृष्ण प्रेम देने के लिए काफी है। ये सुनकर वो जो व्यक्ति था आश्चर्यचकित हो जाता है और वास्तव में है नरोत्तम दास ठाकुर के गीत हमारे हृदय को क्या कर देते हैं शुद्ध कर देते हैं। इसलिए प्रभुपाद की एक विशेषता है, प्रभुपाद की नकल कोई नहीं कर सकता, जिसने नकल की वो खत्म हो गया है इसको आपने कहा नहीं। तो प्रभुपाद प्रभुपाद है, प्रभुपाद की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, अनुकरण नहीं, प्रभुपाद ने कहा मेरा अनुसरण करो। प्रभुपाद ऐसे आचार्य थे इतने बिजी होकर भी वो समय निकालकर शास्त्र पढ़ते थे, अपना जप करते थे और नरोत्तम दास ठाकुर के गीतों को डेली गाया करते थे। दोपहर के समय प्रभुपाद का फिक्स था, दोपहर के समय में शिष्य को बोलते थे हारमोनियम लेके आओ, अपना कुर्ता उतार देते थे और प्रभुपाद को कोई आवश्यकता नहीं है कि उन पर कीर्तन सुनने के लिए 100 लोग बैठने चाहिए मेरे सामने, में हारमोनियम में एक स्वर में गाने वाला वर्धन बजना चाहिए, कर्तन बजना चाहिए, नो नीड। प्रभुपाद किसके लिए गा रहे हैं? आचार्य और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कई सारे कीर्तन आप सुनो ओनली हारमोनियम बज रहा है, प्रभुपाद रिकॉर्डिंग, कोई कर्ता नहीं, मर्दन नहीं, कुछ नहीं। तो ऐसे प्रभुपाद बैठ जाते थे और नरोत्तम दास ठाकुर के विशेष रूप से प्रार्थना से गीत गाया करते थे। और प्रभुपाद कई सारे भागवत के तात्पर्य में लिखा है कि ये नरोत्तम दास ठाकुर और भक्तिविनोद ठाकुर के जो गीत हैं, और प्रभुपाद कहते कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा कहते हैं कि वेदों से भी ये बढ़कर है, ये उनसे कुछ कम नहीं है। इस प्रकार से ये जो गीत आचार्य के हैं, विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर के, जो बहुत ही अधिक हमारे हृदय की शुद्धि करने वाले हैं, जिनको हम गाते हैं। जब एक बार प्रभुपाद लंदन में थे तो उस समय प्रभुपाद ऐसे दो बार को कीर्तन कर रहे थे, उनके एक शिष्य पुरुषोत्तम बैठा था जो फिर और दूसरी उनकी एक शिष्या थी यमुना माता जी, वो सामने बैठी थी। तो प्रभुपाद ने यमुना माता जी ने कहा प्रभुपाद आप हमेशा गाते रहते, बताइए आपका, प्रभुपाद ने उसको पूछा यमुना मुझे ये बताओ तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा गीत तुम्हें लगता है। यमुना माता जी कहते मेरा शिक्षा स्तकम बहुत फेवरेट है, चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा स्तकम है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तब यमुना माता जी को रहने दिया। प्रभुपाद की बहुत अच्छी फ्रेंड थे उनके शिष्य यमुना माता जी, जिसको अधिकार था कुछ भी पूछ सकते थे और प्योर डिवोटी थे। एक बार यमुना माता के बारे में एक भक्त ने कंप्लेंट की प्रभुपाद के पास, प्रभुपाद ये विग्रह का ड्रेसिंग करती है सुबह और जब ये गोविंद माधव पुरुषम शुरू होता है तो आगे आके खड़ी हो जाती है और रोती रहती है, बल्कि लेडीज के सामने आंसू नहीं निकालने चाहिए, हाँ ये विग्रह सेवा में अपराध है। प्रभुपाद ने कहा वो शुद्ध भक्त है, वो निकाल सकती है आंसू, तो मत करना। तो वो यमुना माता प्रभुपाद को पूछती है कि प्रभुपाद अभी इनका तो पता चला प्रभुपाद को शिक्षा से कम है, यमुना माता जी पूछती है प्रभुपाद मुझे बताओ आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, कौन सा गीत आपको अच्छा लगता है। प्रभुपाद कहते नरोत्तम दास ठाकुर का प्रार्थना में है, हरि हरि विफले जन्म भवाय मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विषय खाय, हे हरि हाँ मैंने मनुष्य देह प्राप्त करके भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, आपका जीवन क्या कर दिया विफल, विफलता में गवा दिया। तो प्रभुपाद ने जैसे ही बोला वो चकित हो गए, उनको लगा कि कोई माधुरी लीला का सॉन्ग होगा, हाँ राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर, वो ऐसा सोच रहे थे, बल्कि प्रभुपाद का कौन सा फेवरेट सॉन्ग था, विष खा लिया मैंने, राधा कृष्ण की भजन नहीं किया, मनुष्य जीवन गवा दिया। इस प्रकार से प्रभुपाद के फेवरेट आचार्य में ये भी एक थे नरोत्तम दास ठाकुर, और वास्तव में उनका चरित्र बहुत दिव्य है और विस्तार से है, जिसको हम पढ़ते हैं सुनते हैं निश्चित रूप से हम शुद्धि अपने हृदय में अनुभव करते हैं। और यही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, जब तक हमारी जीवा है तब तक हम भक्तों का क्या करें, जीवा से गुणगान कर सके, हाँ वो हमें बचा सकता है, चाहे हमारे अंदर हजारों कमियां क्यों ना हो, अशुद्धियां क्यों ना हो, लेकिन हमारा हम सुरक्षित है जब हम भक्तों का गुणगान करते हैं निरंतर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के, श्रील प्रभुपाद के।
खेतुरी ग्राम के समवेत गौर भक्त वृंद के निदाय।